जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बन सहरी। यमुना तीरा बन चहरी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बन चहरी। यमुना तीरा बन चहरी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। परिव्राज कचार्य स्तोतर शास्त्री श्रीमदिवाहिंग्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी त्रील प्रभुपाद की जय। नृत्य लीलाउंडर आचार्य शिव दी होलवर्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौंडताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी All glory is the Simple Devotees. All glory is the Simple Devotees. All glory is the Simple Devotees. All glory to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. So, ये कार्तिक का जो महीना है, आपको पता होना चाहिए कि कब से शुरू हुआ था ये? 11 तारीख से शुरू हुआ था, 11 अक्टूबर से है? वैसे 10 तारीख से कार्तिक व्रत शुरू किया गया, लेकिन 10 तारीख को पूर्णिमा थी तो 11 तारीख से 11 अक्टूबर से कार्तिक का व्रत शुरू हुआ था और ये समाप्त होगा 8 नवंबर को समाप्त होगा, ये है ना। तो ये कार्तिक का जो एक महीना है ये बहुत ही पवित्र है। साल भर के जो 12 महीने हैं इनमें ये सबसे ज़्यादा पवित्र है और भगवान को प्रिय है। तो इसके महात्म्य कई बातें हैं जो शास्त्रों में बताई गई हैं, इनको मैं आपको कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और इसका फिर लाभ उठा सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा और बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। जितना आप को समझ में आए और जितनी आपकी शक्ति हो इसका लाभ उठाइए। ये जो महीना है ये दामोदर मास भी कहलाता है, क्योंकि इस महीने में भगवान को माता यशोदा ने बांधा था, क्योंकि भगवान शैतानी करते थे,
बहुत मधुर लीला था,
तो इसलिए दामोदर लीला चूंकि इस महीने में हुई थी इसलिए इस महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। तो कार्तिक महात्म्य एक प्रार्थना है, दामोदरम प्रपद्येहम श्री राधारमणम प्रभुम प्रभावान्यस्य तन् प्रेष्ठम कार्तिकः सेवितो भवेन। मैं परमेश्वर दामोदर की शरण लेता हूँ जो श्री राधिका के प्रिय हैं और जिनके प्रभाव से उनका जो सबसे प्यारा महीना कार्तिक है उसका सेवन किया जा सकता है। तो कार्तिक के महीने में जो है जो नियम पालन किए जाते हैं इनका उल्लेख पुराणों में है, जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ऐसे पुराणों में इसका उल्लेख है। इस महीने में जो वैष्णव हैं वो नियमित रूप से श्री दामोदर की पूजा करते हैं। इस महीने में विशेष रूप से पूजा होती है किसकी? श्री दामोदर की। मतलब रस्सी से जो बांधे जा रहे हैं माता श्रद्धा जिनको बांध रही रस्सी से, ऐसे भगवान दामोदर की नियमित रूप से प्रतिदिन वैष्णव लोग पूजा करते हैं। और कुछ और भी नियम हैं जिनका पालन करते हैं, जैसे सूर्योदय के पहले स्नान करना है? और ब्राह्मणों को दान देना, तो इसमें कुछ अब हम चर्चा करेंगे। जो मनुष्य कार्तिक के महीने को व्यर्थ कर देता है, मतलब कोई पूजा पाठ नहीं करता कार्तिक के महीने में, मतलब गंवा देता है, बिता देता है व्यर्थ में, तो वो ऐसा मूर्ख है। कैसा मूर्ख है? जिसको चिंतामणि प्राप्त हुई है और वो उसको फेंक देता है कहाँ? कचड़े में है? तो मूर्ख है। तो श्री कृष्ण उसका बहिष्कार कर देते हैं अगर वो कार्तिक को वैसे बिता देता है बिना नियमों का पालन किए। क्योंकि ये जो महीना है ये भगवान विष्णु को बहुत प्यारा है। तो ये पद्म पुराण में नारद जी बताते हैं शौनक आदि ऋषियों को। ये जो बहुत दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है, तो जो लोग कार्तिक में विष्णु की पूजा नहीं करते हैं
उनका ये मनुष्य जीवन बेकार जाएगा। हा? 10 साल के जो पुण्य हैं, 10 साल तक जो आपने पुण्य किए हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे अगर भगवान हरि की पूजा नहीं करते कार्तिक में तो। हुँ? क्या समझे? जो हरि की पूजा नहीं करते कार्तिक के महीने में और हरि कथा नहीं श्रवण करते हैं तो क्या होगा उनका? क्या होगा? 10 साल तक जो पुण्य किए हैं वो खत्म। इस स्कंद पुराण में ये ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से। और कार्तिक के महीने का देखिए कितना महात्म्य है। सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है और सब प्रकार के दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उनका भी करोड़ों गुना अगर कर दिया जाए तो भी कार्तिक के पुण्य के बराबर नहीं हो सकते। और जितने भी यज्ञ हैं उनको करने से और सब तीर्थों का दर्शन करने से और दान करने से, पुष्कर में वास करने से, कुरुक्षेत्र में वास करने से, हिमालय में वास करने से और सुमेरु पर्वत के बराबर सोना दान करने से जो है जो पुण्य होता है तो वो सब पुण्य जो है कार्तिक में भगवान केशव की कृपा से प्राप्त हो जाता है। तो ये सत्य है। इस महीने में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो भी पवित्र कर्म किए जाते हैं उनका फल अविनाशी होता है। क्या समझे? उनका फल अक्षय होता है, नष्ट नहीं होता है। तो क्योंकि ये महीनों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है और सबसे ज्यादा पवित्र ये महीना है। अभी कार्तिक का महीना जो है ऐसा है कि कोई महीना कार्तिक जैसा नहीं है। जैसे कि युगों में कौन सा युग सबसे श्रेष्ठ है? सतयुग। युगों में सतयुग जैसा कोई युग नहीं है, उसी प्रकार से महीनों में कार्तिक जैसा कोई महीना नहीं है। और वेदों जैसा कोई शास्त्र नहीं है, है कि नहीं? और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार से कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है। तो ये हमेशा वैष्णवों को बहुत प्यारा है। कार्तिक का महीना वैष्णवों को बहुत प्यारा है। भक्ति पूर्वक अगर भगवान की सेवा करे कार्तिक में तो वैष्णव जो है अपने पितरों का उद्धार कर सकता है जो नरक में कष्ट भोग रहे हैं। ये स्कंद पुराण में लिखा है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से 12 महीनों में ये महीना विशेष रूप से श्री कृष्ण को प्रिय है और श्री विष्णु निश्चित रूप से उस भक्त को जो उनकी पूजा करता है कार्तिक में और उनके स्थान में निवास करता है तो चाहे वो थोड़ा सा भी पूजा का पालन करे। भगवान दामोदर जो है भक्तवत्सल हैं, प्रसिद्ध हैं, तो ये जो महीना है वो भी उन्हीं का जैसा गुण इस महीने में भी है कि थोड़ा सा प्रयास करे तो बहुत फल प्राप्त होता है। कार्तिक में जो है जैसे दामोदर भगवान बहुत जो है उदार हैं, उसी प्रकार से कार्तिक का महीना बहुत उदार है। थोड़ा सा भी अगर आप पूजा करते हो तो इसका बहुत फल प्राप्त होता है। इस संसार में जो व्रत किए जाते हैं तो उनका फल जो है अगले जन्म मिलता है, एक जन्म के लिए मिलता है फल, परंतु कार्तिक का जो व्रत है उसका जो फल है वो 100 जन्मों तक प्राप्त होता है। समझो, कार्तिक का जो व्रत है कोई व्यक्ति अगर करता है तो फिर उसको निम्न जन्म नहीं प्राप्त होंगे, नीच योनि में जन्म नहीं प्राप्त होगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। ये भी बड़ा खतरा है कि कुछ गलती हो जाए तो गिर सकते हैं 84 लाख योनियों में, है ना। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बन सकते हैं। कार्तिक का व्रत कोई करे तो उसके लिए खतरा नहीं है, नीचे गिरने का खतरा नहीं है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे महर्षि, जो व्यक्ति वैष्णव व्रत का पालन करता है अपनी क्षमता के अनुसार, तो उसके हाथ में मुक्ति जो है मतलब आ जाती, करतलगत हो जाती है, उसके हाथ में मुक्ति आ जाती है। ये जो व्रत है चाहे थोड़ा भी किया जाए, कार्तिक में इसका सबसे ज्यादा फल प्राप्त होता है। यहां तक कि इस महीने की जो पूजा है वो देवऋषि और पितरगण भी करते हैं, इस महीने की पूजा। जो दान है, तपस्या है, होम है, जप है, ये सब जो है अक्षय परिणाम देते हैं अगर कार्तिक में किए जाएं। और कोई व्यक्ति विशेष रूप से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अगर भोग अर्पित करता है, तो उसका जो परिणाम है वो निरंतर प्राप्त होता रहता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान विष्णु को भोग अर्पित करता है कार्तिक में, तो उसके जो है जीवन में कभी भी विपत्तियां नहीं आएंगी। 14 मनवंतरों तक जो है उसके जीवन में विपत्तियां नहीं आएंगी। 14 मनवंतर का मतलब है एक कल्प तक उसके जीवन में विपत्तियां नहीं आएंगी। और इस महीने में जो है जो व्यक्ति श्री दामोदर भगवान के सामने सूर्योदय से पहले आता है मंदिर में और जागता है, जैसे कि 4:30 बजे मंगल आरती होती है ना, तो उस समय अगर आता है भगवान दामोदर के मंदिर में इस महीने में, तो उसको जो है 1000 गऊ दान का फल प्राप्त होता है। क्या समझे, 4:30 बजे अगर आप भगवान दामोदर के मंदिर में आते हैं, सैया को छोड़ करके स्नान करके आते हैं कार्तिक में, तो 1000 गऊ दान का फल प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति अंतिम प्रहर में, रात्रि के अंतिम प्रहर में जागता है भगवान के मंदिर में, तो उसको भगवान विष्णु का जो धाम है वो उसके हाथ में आ जाता है, भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति हो जाती है, है ना। तो ये ब्राह्म मुहूर्त होता है, 4:10 से शुरू होता है 4:58 तक, तो ये समय विशेष रूप से कार्तिक में और ज्यादा इसका फल होता है। जो कार्तिक व्रत है जैसे कि संतों की सेवा करना, है ना, कार्तिक में जो है ना ये नियम बनाए जा सकते हैं, संतों की सेवा करना और गौ की सेवा करना और श्रीमद् भागवत श्रवण करना, कृष्ण कथा श्रवण करना और भगवान श्री विष्णु की पूजा करना और रात्रि के अंतिम 3 घंटों में जागना भगवान के मंदिर में, तो ये सब जो है कलयुग में बहुत दुर्लभ ये जो है कार्य है। और अगर सूर्य ग्रहण हो और इतवार हो और कुरुक्षेत्र में स्नान करे कोई, इतवार को सूर्य ग्रहण भी पड़े और कुरुक्षेत्र में कोई स्नान करे, तो जो फल प्राप्त होता है वो फल प्राप्त हो जाता है केवल एक बार स्नान करने से कार्तिक के महीने में। कार्तिक में स्नान का इतना फल है, सोचिए। कार्तिक में जो है भगवान के मंदिर की परिक्रमा में जो एक एक पग रखा जाता है, उठाया जाता है, तो उसका जो है ना फल होता है क्या, एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर की परिक्रमा में जो कदम बढ़ाते हैं ना, एक एक कदम बढ़ाते हैं, तो एक ही कदम का जो फल है वो कितना होता है? एक अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर होता है। और भक्ति पूर्वक जो है भगवान हरि के मंदिर में कोई गाता है और नृत्य करता है तो वो उनके नित्य धाम में वास करता है। भगवान के नामों का कीर्तन करें और गजेंद्र मोक्ष की का जो है ना पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष श्रीमद् भागवत में है, तो उसको फिर दोबारा जन्म और मरण का कष्ट नहीं देखने को मिलेगा। जो प्रार्थनाएं करे और कीर्तन करे रात्रि के पिछले प्रहर में तो वही मतलब है 4:30 बजे रात, मतलब जो समय होता है उस समय, तो वो व्यक्ति जो है अपने पितरों के साथ श्वेत द्वीप में निवास करता है और श्री हरि को जब भोग लगाता है तो वो व्यक्ति जो है उतने युगों तक स्वर्ग में वास करेगा जितने उस भोजन में कण हैं। अगुरु और कर्पूर अगर जलाए भगवान की प्रसन्नता के लिए तो फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेगा इस संसार में। और जो विष्णु कथा श्रवण करते हैं इस महीने में तो उस श्लोक का जो ना आधा श्लोक और चौथाई श्लोक का भी जो ना जो फल है वो क्या होता है? 100 गौदान के बराबर होता है। विष्णु कथा के जो श्लोक हैं तो आधा श्लोक चौथाई श्लोक श्रवण करने का भी फल कितना है? कितना? 100 गौदान के बराबर है। जितने भी कर्तव्य हैं उन सबको छोड़ देना चाहिए। संतों के द्वारा जो है कथा श्रवण करने के लिए कार्तिक में जितने भी काम हैं उन सबको छोड़ दो, संतों को मुझसे कृष्ण कथा सुनने के लिए, और चाहे वो आध्यात्मिक लाभ के लिए कोई श्रवण करे या कुछ और भी आशा करे, चाहे सांसारिक आशा करे, लेकिन अगर हरि कथा में वो लगा हुआ है तो अपने परिवार के 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा वो। ये सोचो हरि कथा में चाहे वो किसी कारण से सुन रहा हो, कुछ दूसरा ही कुछ उसका मतलब हो, लेकिन वो श्रवण कर रहा है अगर, तो अपने परिवार के 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा वो व्यक्ति जो है। तो जो व्यक्ति प्रतिदिन कार्तिक के महीने में शास्त्रों का श्रवण करने में लगाता है तो वो जो है अपने जितने भी पाप कर्म है उन सबको जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल रोज प्राप्त करता है। कौन? जो कथा श्रवण करता है। तो सचमुच मधुसूदन यज्ञों से और गौदान से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने प्रसन्न होते हैं कार्तिक में उनकी कथा श्रवण से। हरि कथा श्रवण करने से व्यक्ति जो है करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो कष्ट हैं उनसे मुक्त हो जाता है। और रोज अगर वो प्रयास करता है श्रीमद् भागवत पढ़ने का इस महीने में तो वो जो है 18 पुराणों के पाठ का फल प्राप्त करता है। रोज श्रीमद् भागवत का श्रवण या पाठ करने का जो प्रयास करे 18 पुराणों को पढ़ने का उसको फल प्राप्त होता है। और कार्तिक में व्यक्ति को जो है भक्तियों का और ज्यादा अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? वैष्णवों के संग में रह करके और यहां तक कि चाहे अपने बहुत से काम छूट रहे हों और बहुत से और भी धार्मिक कार्य हैं अगर वो छूट रहे हों तो उनको छोड़ करके भी कार्तिक में क्या करें? क्या करें? वैष्णवों के संग में कृष्ण की भक्ति का विकास करें कार्तिक में। स्कंद पुराण में ये बात ब्रह्मा जी ने कही है नारद जी से। तो जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान करे, इंद्रियों को बस में करे और जप करे हरे कृष्ण मंत्र का, और पूरे कार्तिक में भगवत प्रसाद ही केवल ग्रहण करे, तो वो सब पापों से मुक्त हो जाता है, है? और वो जो है प्रसिद्धि प्राप्त करता है, बल प्राप्त करता है, साहस प्राप्त करता है। हजारों जो अपराध हैं और सबसे बड़े बड़े जो पाप हैं तो वो भी समाप्त हो जाते हैं जो व्यक्ति भगवान हरि की पूजा करे कार्तिक में, और भगवान को जो है ना उनका जो प्रिय क्या है, खीर, घी के साथ में खीर अर्पण करे, भोग लगाए, और भगवान का जो उच्छिष्ट है उसका ही सेवन करे, तो वो जो है दिन प्रतिदिन यज्ञ करने का जो फल है वो प्राप्त करता है। तो ये बात पद्म पुराण में नारद जी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति स्नान करे और जागरण करे, दीपदान करे और तुलसी के बगीचे को सींचे कार्तिक में, क्या कार्तिक में क्या करना, स्नान करे, जागरण करे और दीपदान करे और तुलसी की सेवा करे कार्तिक में, तो वो जो है भगवान विष्णु के समान रूप प्राप्त करता है, मतलब सारूप मुक्ति प्राप्त करता है। तो जो लोग ये सब अभ्यास करते हैं, 3 दिन के लिए अगर अभ्यास करते हैं तो वे देवताओं से भी ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं, देवता लोग भी उनकी वंदना करेंगे। कार्तिक में 3 दिन भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करे तो फिर उनके लिए क्या कहा जाए, जो जीवन भर कार्तिक में इन नियमों का पालन करते हैं उनके बारे में क्या कहा जाए। तो पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बता रहे हैं इस बात को। अब विशेष जो कार्तिक व्रत है वो क्या है, एक तो हरि जागरणम, मतलब रात्रि के पिछले पहर में जागना है ना, और सूर्योदय से पहले स्नान करना और तुलसी सिंचन करना और ब्राह्मणों को दान देना और दीप दान करना भगवान के मंदिर में। तो जो व्यक्ति इन 5 व्रतों को करता है तो उसको फिर दोनों चीजें प्राप्त होती हैं, भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं कार्तिक में। तो जो व्यक्ति पानी में स्नान ना कर पाए, जो बीमार है, तो उसको अपने को शुद्ध करना चाहिए, कैसे, भगवान विष्णु के नामों के द्वारा ही शुद्ध करना चाहिए। ये जो भगवान का कीर्तन है ये आत्मा को स्नान करा देता है, शुद्ध कर देता है। और कोई व्यक्ति अगर समय पर जो है ना अगर दान नहीं दे सकता है ब्राह्मणों को, तो वो जो है ब्राह्मणों को भोजन करा सकता है उतनी मात्रा में और अपने व्रत को पूरा कर सकता है। जो व्यक्ति दीप दान नहीं कर पाता है, कार्तिक में अगर दीप दान ना कर पाए तो क्या करें, दूसरे के दीप की अगर रक्षा करे, दूसरे ने जो दिया जलाया है उसकी सुरक्षा करे भगवान के मंदिर में, या हवा से बचाए दिए को, तो भी दीपदान का फल पाएगा। अगर किसी को दिया नहीं मिल पा रहा है अपना, तो वो दूसरे के दिए को भी अगर जो बुझ रहा है उसको जला देता है या उसकी रक्षा करता है, तो वो भी दीपदान का फल प्राप्त करता है। अगर तुलसी वृक्ष नहीं मिल रहा है सेवा करने के लिए, सिंचन करने के लिए, तो वैष्णवों की सेवा कर सकता है, ब्राह्मणों की सेवा कर सकता है। अगर ये 5 व्रत अगर नहीं कर पाता है तो वो ब्राह्मणों की, गौओं की सेवा करे और पीपल या बट वृक्ष की सेवा करे, इस प्रकार से वो अपने व्रत को पूरा करे। तो ये भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बता रहे हैं पद्म पुराण में। करोड़ों कल्पों में जो पाप कर्म इकट्ठे हुए हैं तो तुरंत ही जल जाते हैं जब कार्तिक में दीप जलाया जाता है भगवान के लिए। तो दीप का जो गुण है इसको सुनो, ये भगवान केशव को बहुत प्यारा है दीप। तो दीप दान दीप अर्पण करने से इस महीने में व्यक्ति जो है इस पृथ्वी में दोबारा जन्म नहीं लेगा। ये जो दीप दान है ये सब प्रकार के लाभ देता है। जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जो फल प्राप्त होता है, या नर्मदा में चंद्र ग्रहण के समय नर्मदा में जो फल प्राप्त होता है उससे करोड़ गुना फल प्राप्त होता है दीप दान के द्वारा। अश्वमेध तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, अश्वमेध यज्ञ तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। जो व्यक्ति इस महीने में घी का या तेल का भी दिया जलाता है भगवान के लिए, क्योंकि भगवान को इस प्रकार से अर्पण करके जो है उसके जितने भी और भी जो पुण्य कर्म हैं, चाहे उनमें मंत्र ना हो और विधि पूर्वक ना किए जाएं या सफाई पूर्वक ना किए जाएं, तो भी उनका फल प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। जितने भी और धार्मिक कृत्य हैं अगर उनमें कमी है, मंत्र का उच्चारण नहीं हुआ है या विधि का पालन नहीं हुआ है, तो भी वो पूर्ण हो जाएंगे। जो व्यक्ति केशव को कार्तिक में दीप अर्पण करता है तो वास्तव में वो सब प्रकार के यज्ञ का फल प्राप्त करता है। और दूसरी तरफ तीनों लोकों में जितने भी पुण्य कर्म हैं उनका फल नहीं मिलेगा। अगर कि कार्तिक में जो है अगर भगवान केशव के सामने दिया नहीं जलाया, तो अनादिकाल से जो पितृलोक हैं वो प्रार्थना करते हैं, अनादिकाल से प्रार्थना कर रहे हैं पितृलोक कि हमारे वंश में कोई ऐसा वंशधर कब होगा जो भगवान केशव को प्रसन्न करे दीप दान के द्वारा। पितृलोक जो है अनादिकाल से प्रार्थना करते हैं कि हमारे वंश में कौन होगा ऐसा जो हमारे वंश में कोई दीप दान करे, क्योंकि उससे भगवान चक्रधारी की कृपा से हमारा उद्धार हो जाएगा। अगर हमारे वंश में कोई पैदा हो तो दीप दान करे तो चक्रधारी केशव की कृपा से हमारा जरूर उद्धार हो जाएगा। यहां तक कि सुमेरु पर्वत के बराबर अगर पाप इकट्ठे किए हैं आपने तो ये दीप दान है ये निश्चित रूप से उनको नष्ट कर देगा उन पापों को। तो ये भगवान वासुदेव के मंदिर में हो या अपने प्राइवेट घर में हो, ये जो दीप दान है इसका चमत्कारी फल प्राप्त होता है। तो सचमुच जो व्यक्ति दिया जलाता है मधुसूदन के सामने तो वो सौभाग्यशाली है, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसको जो है सैकड़ों जो यज्ञ हैं और तीर्थों में भ्रमण है तो उनका जो ना जो फल है उसकी कोई तुलना ही नहीं है, दीपदान के सामने कोई तुलना ही नहीं है।